ओम शांति। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको देख करके आपको जो हमारा सेशन है आध्यात्मिकता का, तो उसका मूर्तिमान स्वरूप है जो हमारे अंजलि दीदी हैं। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 35 इयर्स से वो राजयोग मेडिटेशन का स्टडी कर रहे हैं। अपना राजयोग मेडिटेशन का स्टडी करते हुए उन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा को भी पूरा किया है। बीटेक में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। 3000 टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको वैल्यू एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कोर्स कराया मॉरिशस में। देन लिविंग वैल्यूज के ऊपर रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी उन्होंने कराए हैं। हमारा एक बहुत ही सुंदर कैंपस है शांति सरोवर जो हैदराबाद में है। जिस प्रकार से हम सरोवर कहते हैं तो वो शांति का कुंड है, जो शांति सरोवर है, जो वहां पे आकर के ही लोगों को शांति की महसूसता होती है। तो वहाँ पे वो बहुत वेल नोन फैकल्टी है और बहुत अच्छी सेवाएं भी वहाँ पे देते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी को हम इनवाइट करेंगे, हम कहते हैं कि आपके विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। ओम शांति।
ओम शांति। विकास भाई को धन्यवाद। हमारे बीच आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसन जी, प्रो वाइस चांसलर YCMOU नासिक। और आप सब भाई बहने सबको ओम शांति। और आज अभी मुझे टॉपिक दिया है एक्सप्लोरिंग योर इनर लैंडस्केप स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हम सबको यह अभी पता ही चला है कि हमारी ये जो होलिस्टिक वेलबींग कॉन्फ्रेंस की अम्ब्रेला थीम है, इस थीम को लेते हुए बहुत सुंदर रूप से कल से होलिस्टिक वेलबींग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि मेंटल वेलबींग, फिर इंटेलेक्चुअल वेलबींग, वैसे ही अभी थोड़े समय पहले एनवायरमेंटल वेलबींग, तो ऐसे ऐसे विषय ना हम सब चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। और सारा वेलबींग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हुए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। एंड वेलबींग की जब बात आती है तो यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रियली गुड। कैसे हैं, आर यू ओके, ना तो जवाब क्या चाहिए, हाँ हम ओके हैं ना। बट इफ यू सी, बहुत तरीके से जब हम अपने आप को देखते हैं, और जो हमारा मेन इस होलिस्टिक वेलबींग का जो माना कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, डिफरेंट एरियाज लाइक मे बी वी आर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मे बी गुड बट नॉट नेसेसरीली मेंटली यू आर ओके। मेंटली ओके वाला व्यक्ति अपनी फिजिकल पावर को कैसे यूज करेगा, अच्छे कार्य के लिए यूज करेगा या ना विनाश का कार्य करेगा, लोगों को डराने का कार्य करेगा, क्या करेगा ना। देखिए, फिजिकली कोई अच्छा है, तगड़ा है, स्ट्रांग है, लेकिन लेट अस से थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस है उस व्यक्ति को, तो टेंशन हो जाता है, पता नहीं कब क्या कर दे। जैसे सपोज बंदर है, बंदर के हाथ में यदि चाकू है तो क्या लगता है, वो डर लगता है, क्योंकि किस घड़ी क्या कर दे पता नहीं है। सो वो बहुत रिस्की हो जाती है ना सिचुएशन, तो हम फिर तरीके ढूंढते हैं कि कैसे उसके हाथ से वो चाकू हम ले ले। आज यदि हम देखते हैं इंसान को, साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इतना एडवांसमेंट जो है वो हो रहा है, और ये एडवांसमेंट होते होते उसके साथ साथ उसके नेगेटिव भी इश्यूज आते जा रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम। ये चीज लेट अस से सम टाइम बैक थी नहीं, और आज तो गवर्नमेंट को यहां तक करना पड़ रहा है, जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो पहले वो पूरा कमेंट्री सुननी पड़ती है, हाँ कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। फिर भी लोग फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं, फिर भी लोग फंस रहे हैं, हाँ। मैं अपने, मैं जिस आश्रम पर रहती हूं वहां पर ही मुझे दो माताएं जो क्लास में आने वाले हैं वो अपने रिलेटिव्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए खो दिए और एक व्यक्ति ने तो बहुत सारा अपना सेविंग का पार्ट जो है वो खो दिया इन चक्करों में आकर के। अभी क्या ये इंटेलिजेंट लोग नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है क्या? इनके पास डिग्री नहीं थी, अच्छी खासी डिग्री थी, और ये जो अच्छी खासी डिग्री और ये ज्यादा जो ऑनलाइन इसमें जो है वो करते रहते हैं, शायद वो ही ज्यादा फंसते होंगे। जिनको आता ही नहीं वो तो इसमें जाते ही नहीं होंगे। तो इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू से इन दैट सेंस अबाउट दीज थिंग्स, कभी कभी लगता है यू आर सेफ, जो कहता है नहीं भाई मैं पैसे से ही काम करूंगा। क्योंकि सोचने की बात है कि जैसे जैसे ये चीजें आती जा रही है, देखिए मोबाइल आ गया है, कितने सारे काम मोबाइल करता है, करता है ना, लेकिन उसके साथ साथ, उसके साथ साथ क्या कर दिया आपका वो क्या डिजिटल डिटॉक्स का सेशन भी हुआ ना। तो ऐसी चीजें आ रही है, सुख सुविधा की चीजें जिसको हम कहते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, थोड़े समय की खुशी और ज्यादा समय रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे नुकसान ही हो रहे हैं। अभी आपने एनवायरमेंट वाला जो है वो क्लास किया, नहीं हमने सोचा हमारे बहुत सारे जैसे बड़े बड़े रोड होंगे, यू नो फोर वे लेन, सिक्स वे लेन, ऐसे गाड़ियां फास्ट जाएगी, ये होगी वो होगी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन इसके साथ क्या हो गया, हाँ पूरी हमने जो है जो एक प्रकार का हजारों सालों से एक प्रकार की जो टेरेन थी उस टेरेन को हमने बदल दिया, जहां पहाड़ियां थी उनको समतल कर दिया। तो ऐसे करने से कितना नुकसान जो है वो हो रहा है। मतलब सुख सुविधा की इच्छा रखना गलत बात नहीं है, क्यों, जब जन्म है, मनुष्य जन्म लिया है तो शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, लेकिन इस सुख सुविधा के प्राप्त करने के कॉन्टेक्स्ट में, प्राप्त करने के विधान में, प्राप्त करने की विधि में यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो सोचने की बात है क्या हम सुखी रह सकते हैं, रह सकेंगे दूसरों को दुख दे करके? अच्छा हम कहेंगे किसको हम दुख दे रहे भाई, लोगों को तो दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन जीव जंतुओं को, सूक्ष्म कर्मों की गति, क्योंकि मेरी टॉपिक स्पिरिचुअल वेलबींग है तो मैं आपको दो तीन चीजों को जोड़ना चाहती हूं इसमें, कि हम जो कुछ भी करते हैं इट कम्स बैक टू यू, गुड और बैड। आप कहां भी चले जाओ, कहां भी चले जाओ, अर्थात आपको आपकी मृत्यु हो जाती है लेकिन आपकी आत्मा दूसरा जन्म लेती है, वहां भी आपका पिछले जन्म में किया हुआ कर्म आपको ढूंढ के आपके पास आएगा, आएगा। आप ऊपर, जैसे सुनीता विलियम्स थी ना वहां स्पेस में, वहां भी चले जाओ, या बहुत जो धरती है उसके अंदर भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम जो कर्म करते हैं वो इतनी पावरफुल चीज है। अच्छा अभी ना 3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, 5:30 3 मिनट के लिए मेडिटेशन होता है, तो यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है कर्म करते करते बीच में परमात्मा की याद करना। तो 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। गीत में संदेश सुना सभी ने, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो हाँ, बात चल रही थी कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको मिलना ही है। चाहे अब देखिए, सामने वाला व्यक्ति चाहे कमजोर है, मूक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप नेचर ही ले लीजिए, हमने बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो तोड़ डाले, फॉरेस्ट कम कर दिए, पर्वत जो है वो तोड़ डाले क्योंकि हमको रोड बनाने हैं, हमने जो जगह रिवर्स की थी, लेक्स की थी, एनक्रोच कर लिया। पानी हमको क्या कहेगा, धरती हमको क्या कहेगी, पेड़ पौधे हमको क्या कहेंगे, पर्वत हमको क्या कहेंगे, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, इसका रिजल्ट दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, धरती ने कुछ नहीं किया, पेड़ पौधों ने कुछ नहीं किया, हवा पानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे किए हुए कर्म का फल हमारे सामने आ गया। न धरती न पानी न कोई भी हाई कोर्ट में नहीं गए कि इन्होंने हमारी जगह ले ली, गए वो नहीं गए कोर्ट में। हाँ, थोड़े से लोग उनके लिए लड़ते हैं, वो अलग चीज है, बट ये जो एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमने ह्रास किया ये कोई भी नहीं गए, लेकिन हमारे कर्म का फल हमको मिल गया। देखो, पानी आ जाता है घरों में, बरसात हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे घर में पानी आया पानी आया। अरे, आपने पानी के अंदर घर बनाया, पानी की जगह में आपने घर बना दिया, तो पानी अपनी जगह ले रहा है ना, गलत क्या कर रहा है, पानी गलत है या हम गलत है ना। भूस्खलन हो जाता है, गिर जाते हैं इतने सारे, अरे ऐसे हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, शिमला में ये हो गया, ऐसे हो गया, वहां हो गया, वायनाड में ऐसा हो गया, किसके कर्म है, हमारे ही कर्म, उसका फल हमको ही मिलता है। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की एक बहुत पावरफुल चीज, आप कितना ईश्वर में मानते हो नहीं मानते हो वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन कर्म जो है, कर्म से कोई भी छूट नहीं सकता। अच्छा किया हुआ कर्म उसका फल मिलेगा, बुरा किया हुआ कर्म उसका भी फल मिलेगा। सो स्पिरिचुअली अपने आप को सशक्त बनाना है। तो ये कभी कभी हम कहते हैं ना, कौन देखता है, कौन देख रहा है, ऐसे नहीं भगवान देख रहा है और वो आपके कर्म का फल आपको दे रहा है। बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनरी है, हम जो कुछ भी इस संसार को देते हैं इट कम्स बैक एंड उसमें टाइम एडिशन हो जाती है, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। अच्छा है तो बहुत अच्छा भी रिटर्न होगा, खराब है तो मल्टीप्लाई होकर भी वापस हमारे पास आ जाता है। तो हमको बहुत अवेयरनेस के साथ, क्योंकि हम इंसान है ना, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, राइट, दैट्स व्हाट वी से आवरसेल्व्स टू बी। सो व्हेन वी आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, तो हम जो कर्म करते हैं उसके ऊपर हमको कितना ध्यान देना है ना? चलता है, कुछ नहीं चलेगा, बराबर उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा ही। सो मुझे 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करनी है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में, कि एंड जहां पर स्पिरिचुअल वेल बीइंग, इफ यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड, नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, ये चीजें हमको पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अटेंशन जब हम लाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से हम बहुत सशक्त रहते हैं। देखिए, शक्तिशाली बनना हर एक को पसंद है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव पावर। पोस्ट चाहिए ना, अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये सब चाहिए, लेकिन इसको ही यदि हम आधार बना लेते हैं तो तकलीफ क्या होगी? न आपका पैसा परमानेंट है, न आपकी पोस्ट परमानेंट है। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, ओके, अब एक ही गलती की तो करोड़ों से रोड में आने में कितनी देर लगती बताइए? कितनी देर लगती? मैटर ऑफ अ सेकेंड। तो यदि मैंने जो क्षणभंगुर चीजें हैं ना, ऐसी चीजों को यदि मैं आधार बना लेता हूं, तो ये आधार मेरे हिलने वाले आधार है, ये आधार ही ठीक नहीं है। अब जैसे मैं कुर्सी पर बैठी हूं, इसके चार पैर है, एंड लेट अस से एक ही पैर, चार भी नहीं, ओनली एक लेग जो है वो थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्या मैं एंजॉय करूंगी कुर्सी में बैठना? ऑलवेज मेरे को क्या रहेगा? टेंशन रहेगा, इसको ठीक कैसे रखूं, इसको ठीक कैसे रखूं। तो आज का जो व्यक्ति है वो बाहर की चीजों के आधार पर अपने आप को पावरफुल साबित करना चाहता है, ओके? जैसे सपोज एक कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी ने इंजीनियरिंग की, उसके आगे किसी ने आईआईटी में इंजीनियरिंग की वाला आ जाता है, तो वो थोड़ा सा लो फील करेगा, अरे ये तो आईआईटी में किया है। अब आईआईटी में के सामने वाले एमआईटी वाला आया तो वो लो फील करता है, अरे उसने तो वहां इंजीनियरिंग की करके। मतलब आप अपने आप से सशक्त होना कब सीखोगे? एंड जब हम बाहर की चीजों को आधार बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें ऊपर नीचे जरूर होगा, पोस्ट पोजीशन में ऊपर नीचे होगा, हमारे से बेहतर कोई तो होगा ही होगा, तो हम जब उसको देखते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कहता है, या सशक्त होने का मतलब ये है, मैं अंदर से सशक्त हूं, अंदर के आधार लूं, अंदर क्या है जिसको मैं ऐसा आधार बनाऊं, जिसको मैं आधार बनाने से मैं कभी हिलूंगा ही नहीं, कोई कुछ कितनी भी कोशिश करे, मेरा सुख छीनने की, मेरी शांति छीनने की, कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। तो मैं अंदर में किस चीज का क्या कहे उसको चिंतन करूं, या संकल्प करूं, या विचार करूं, जिसके आधार पर मैं बहुत स्टेबल रह सकता हूं। ऐसी कोई चीज है? परमानेंट कोई चीज है? क्योंकि ये आंखों को जो कुछ दिखाई देता है ये तो टेम्पररी है, आप इसको आधार बनाते जाएंगे तो आपका आधार ही टेम्पररी है, नाम आधार लेकिन टेम्पररी, तो वो आधार ही नहीं हुआ ना। आज इसको पकड़ेंगे, कल उसको पकड़ेंगे, कल उसको पकड़ेंगे, फिर यहां से छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए चाहिए। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मींस डीप इनसाइड एक बहुत सुंदर अविनाशी शक्ति है, इटर्नल, इंडिविजिबल, इम्पेरिशिबल, ऐसी इनडिस्ट्रक्टेबल, ऐसी एक अंदर शक्ति है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा डर संसार में किसका होता है? सबसे बड़ा डर नॉर्मल में किस चीज को डरते हैं हम सबसे ज्यादा? कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पोस्ट पोजीशन हो, कितना भी कुछ है, नहीं समझ में आया? हाँ, डेथ, राइट, ओके। सो सबसे बड़ा फियर संसार का है डेथ, ओके? एंड और सपोज इस डेथ को ही आप ओवरकम करो, फियर नॉट डेथ, डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्यों? जन्म लिया है तो मृत्यु है ही है, लेकिन इससे रिलेटेड जो डर है ना, डर, फियर, इस फियर को आप ओवरकम करो तो क्या हो गए आप? सबसे पावरफुल। जो मृत्यु को जीतना नहीं, मृत्यु के भय को जीतना, क्योंकि मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है, एक परमात्मा ही है जो जन्म और मृत्यु से परे है, बाकी हमको इस साइकिल से गुजरना ही है हम सबको, तो मृत्यु के प्रोसेस से भी गुजरना है लेकिन विदाउट फियर, जिसको थोड़े साधु संन्यासियों ने प्राप्त किया है, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, ना कितनी फियरलेस स्टेज है ना, फियरलेस ना। आप तो अपने आप को तैयार कर लेते हो, मैं रेडी, चलो रेडी टू लीव, और ईश्वर के पास जाने के लिए मैं तैयार हूं। ये जो चीज है, ये आपके जैसे मेरे जैसे नॉर्मल घर गृहस्थ में रहने वाले कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है, हिमालय पर जाना नहीं है, कुछ नहीं है। राज्यों के अभ्यास में आपको कल पहला शायद पाठ सिखाया गया कि आप कौन हो, कौन हो, आत्मा हो। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिला, देखो हर चीज जो होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नॉलेज, एंड द नॉलेज उसका ठीक प्रकार से एप्लीकेशन करके देन इट इज कॉल्ड विजडम। तीन लेवल होती है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो इंफॉर्मेशन तो मिल गई हमको कि हम आत्मा हैं, ओके गुड, सो वॉट, आई विल से सो वॉट, इफ आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं, सो वॉट, so what difference is it going to make to my existence, to my thinking style, to my behaving style, to my relationships by saying that I am atma? Any use of this information? Ek 1.5 hour kal subah aapko yahi bataya gaya hai na, abhi hum schoolon mein collegeon mein sikhate hain ye equation this that, then uska application sikha dete hain, bhai this is to be applied here and there karke. अच्छा मैं आत्मा हूं, सो वॉट, मैं आपको पूछ रही हूं, लेट अस से आई एम अ लेमैन, दीदी मैं एकदम ही, जैसे ही आप आते हो वापस आपके गांव जाते हो, पता है हमको पता चला है कि हम आत्मा है। अरे भाई कोई मल्टी मिलियनर हो पता चले तो भी मेरे काम के हो, मेरी कोई मदद कर दो। आप आत्मा हो ये पता चलने से वॉट डिफरेंस इज इट मेकिंग इट टू यू, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस? हाँ वो कम होगा, गुड गुड, तो डील करना इजी होगा, गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं चैलेंज कर रही हूं आपको बिकॉज मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं ना, वी आर वेरी मच कंसर्न विथ एप्लीकेशंस। आप दुनिया की कोई भी चीज बताओ, अनलेस इट इज एप्लीकेबल टू मी समवेयर, यूजफुल टू मी समवेयर, दैट इनफर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल टेक एंड आई विल वर्क ऑन इट। नहीं तो आप गीत गाओ, कविता गाओ, ऐसे रोके, ठीक है थोड़े समय के लिए, बट वॉट इट इज गोइंग टू डू टू मी, टू द सोसाइटी एट लार्ज, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, इज इट नॉट? तो ये जो आत्मा है समझना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेट मी टेल यू क्यों। आत्मा को फर्स्ट थिंग इज, आपको बताया गया गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक है, आप में से ही कोई मालूम भी होगा आपको, कि आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड कहां है वो चीज भाई, बहुत दूर है क्या, आकाश में, मंगल ग्रह पे ऊपर है, कहां है, कहां है? वेरी नियर टू यू, यू आर दैट, वॉट नॉट नियर टू यू, यू आर दैट। जस्ट सोचिए इसके ऊपर, चिंतन कीजिए कि मैं आत्मा हूं। एंड इसके ये जो गुण है ना, सिंपल, एक है अविनाशी, इटर्नल, समथिंग विच इज इटर्नल, सत्य, शाश्वत, शाश्वत, फॉर एवर, माय गॉड, एंड दैट थिंग इज यू, एंड यूज दिस टू एम्पावर योरसेल्फ, एंड आपको इतना अच्छा फीलिंग आएगा, यू विल फील सो स्टेडी इन योर लाइफ, इतना कामनेस आ जाएगा कि कोई दूसरे आपके साथ, आपके साथी वाले किसी को जो है लेटर से उनका प्रमोशन हो गया और वो कुछ बन गए जनरल मैनेजर, और आप अभी तक असिस्टेंट जनरल मैनेजर ही हो लेटर से, तो अरे नहीं आप अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं, एंड उसकी जो एनर्जी आती है ना, वो आपको जीवन में बहुत जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। आपको इतना पावरफुल बनाएगी, आप में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि यू विल स्टार्ट पुलिंग ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड ऑल गुड पीपल इन योर लाइफ. यू डोंट हैव टू रन अराउंड. दैट इज एम्पावरिंग योर सेल्फ स्पिरिचुअली. फिर दूसरा आपको आज सबसे लेसन हुआ कि आप किसकी संतान हो. किसकी संतान हो भाई? परमात्मा की संतान. अभी सोचो इसके ऊपर. थिंक व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन. इसका मतलब क्या है? अच्छा, अभी आपको फोन आ जाए लेट अस से किन से, कोई एक बड़ा व्यक्ति, अच्छा मोदी जी लेट अस से, मुझे यहां पर कोई मैसेज देता है कि ये फलाने फलाने कौन है भाई यहां बैठे हुए, मोदी जी का उनके लिए फोन आया है, अनाउंस कर दो. एंड मैं आपको अनाउंस कर देती हूं, अच्छा बहन जी आपके लिए मोदी जी का फोन आया है करके. नहीं, मोदी जी का फोन कहते ही आप कैसे हो जाएंगे? मोदी जी का फोन मेरे. एंड हम सारे भी के लिए मोदी जी का फोन आया, मोदी जी का. क्योंकि मोदी जी, हु इज मोदी जी? वी हैव अ क्लियर आइडिया हु मोदी जी इज. अब वही कोई दूसरे देश का व्यक्ति, लेट अस से कौन सा देश ले लो भाई, न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति इधर बैठा है. एंड अभी आज मोदी जी सो इज वेरी पॉपुलर, मे बी एवरीबडी नोज हिम इन द वर्ल्ड, बट स्टिल लेट अस से समबडी डजंट नो हु मोदी जी इज. एंड उसको कहते कि उसको फोन आया है, तो ठीक है पता नहीं हुई थी. सो पहचान, पहचान क्या कर देती है? एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे में लाती है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो आपको यहां बताया गया हम परमात्मा की संतान है, इस चीज को हमको आत्मसात, पता है ना आपको, यू नो यू हैव टू जस्ट टेक इट इनसाइड. लेना है, बैठना है. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका फायदा मुझे जीवन में कैसे मिलेगा? और भगवान कौन है? है निराकार, लेकिन क्या कहते हैं, हजार भुजाओं वाला, क्योंकि सर्वशक्तिवान है. तो हम तो हमारे पास जो भी क्लास में माताएं आती, भाई आते हैं, सबको बताते हैं और सब अभ्यास करते हैं, हजार भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ है. फिर देखना आपको अकेले ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है. हाँ, करना पड़ता है भी नहीं कहते हैं, मुझे ही मरना पड़ता है. ऐसे वाले जो शब्द होते हैं ना, सब चले जाएंगे. इतना अच्छा फील होगा कि भगवान जो है वो मेरे साथ है करके. सो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का मतलब है, देखिए जैसे कि भोजन से पावर कैसे बनती है, अनाज खाते हैं हम, अनाज खाने के बाद इट हैज टू टर्न इनटू एनर्जी. अनलेस इट बिकम्स एनर्जी, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, इट इज ओनली मेकिंग योर सेल्फ हैवी. इसलिए ऐसी वैसी चीज नहीं खाओ करके कहते हैं, इज इट नॉट? तो जो है ये भी ज्ञान, यहां जो आप सुन रहे हो, ये ज्ञान जो है ये हो गया भोजन. दिस इज फूड फॉर द माइंड. देन सेकेंड स्टेप होता है, द फूड हैज टू बी डाइजेस्टेड, इज इट नॉट? डाइजेस्ट होता है, पाचन क्रिया होती है, तो ही फिर वह काम में आता है, इट बिकम्स एनर्जी. तो जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो है पाचन क्रिया. और जितना हम उसके ऊपर ध्यान देते जाते हैं, अंदर में उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो आपकी चिंताएं देखना आप दूर हो जाएगी. चिंतन और चिंता कितना डिफरेंस है? एक ही अक्षर का डिफरेंस है. लेकिन चिंता करने वाला व्यक्ति इसलिए देखिए चिंता को क्या कहा गया है, चिंता की चिता. माय गॉड, है ना, चिंता की चिता. वो मरने वाला तो एक बार मर गया तो मर गया, ये चिंता वाला तो पूरा टाइम पूरा मरता भी नहीं, मरते रहता है. मरते रहना तो यू नो कितनी खराब है, आइदर मर जाओ या जियो. ये क्या है, बीच की स्टेज ना. तो चिंता से मुक्त होने की विधि है चिंतन. जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं तो हो जाती है एम्पावरमेंट. कौन सा चिंतन? आध्यात्मिक चिंतन. आध्यात्मिक चिंतन इसलिए हमको हमारा स्पिरिचुअल बेस बहुत पावरफुल बनाना पड़ता है. तभी थोड़े समय पहले एक डिस्कशन आया था, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या है. क्योंकि क्या है, पूजा पाठ करते हैं ना, मोस्टली जो यहां बैठे हुए हम पूजा पाठ करेंगे, कोई व्रत है, किसी भी प्रकार के त्योहार आया, सब कुछ करते हैं. सब कुछ करने के बाद अंदर में एम्पावर्ड फील करते हैं क्या? और आजकल तो परेशानी फील करते हैं, वाह ये त्योहार आया, ये करना वो करना, टेंशन 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 जो है वो चलते रहता है. और एक डर, नहीं करेंगे तो पता नहीं भगवान को गुस्सा ना आ जाए, जैसे कि भगवान इंसान है. हमको भगवान का परिचय ही नहीं है, उनको हम हमारे जैसा ही समझ रहे हैं. हमको गुस्सा आता है इसलिए समझते हैं उसको भी गुस्सा आता है करके. तो हम समझते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, मैं आप सच में ही अपने दिल पर हाथ रख करके देखो. अच्छा आप पूजा करते हैं, पूजा करने के वो 5-10 मिनट ना, क्या आपका मन पूरी तरह से तन्मयता के साथ पूजा करते हैं, या यहां पूजा चलते रहती है वहां फोन बजा तो देखो रे किसका फोन आया ये कौन सी पूजा है. टोटल डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, पूरा पूरी तरह से 5 मिनट छोड़ दो, पूरा दिन भर नहीं, 5 मिनट. कैसे होगा हमारा मन सशक्त? बच्चों को पढ़ने के समय क्या कहते हो, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ो, दिल लगा करके पढ़ो बोलते हैं. अच्छा भाई हम पैसे पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं आप अपने आप को देख लो, हाउ मच मार्क्स यू विल गिव ऑन अ स्केल ऑफ 10, स्केल ऑफ 10, 1 to 10 में आप अपने आप को देख लो, मैं कितने मार्क्स अपने को दूंगा, कितनी दिल से पूजा करता हूं, डर से पूजा करता हूं, चिंता से पूजा करता हूं, और उसमें भी इतने विचित्र इच्छाएं रखते हैं. इच्छाएं भी विचित्र रहती है ना. एक व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आया पड़ोसी पर, क्योंकि उस बहुत अच्छा भक्त था वो, बहुत अच्छा भक्त. तो उसने जो है, और वो उस भगवान की उसने पूजा की, तो भगवान तो उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसको जो है बहुत अच्छी प्राप्ति हो गई. तो दूसरा व्यक्ति कहता है, कैसे हुआ आपका, आपको कैसे इतनी प्राप्ति हुई? उन्होंने कहा भगवान ने मुझे दिया. तो जब वो पूजा करता है, वो भी जोर से पूजा करता है और भगवान उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाता है. तो वो भगवान को क्या कहता है, अच्छा भगवान कहता है देखो मैं आपको भी दूंगा, लेकिन द कंडीशन इज बाजू वाले को डबल दूंगा. अरे बाबा ये क्या हो गया, मैं आपको भी दूंगा लेकिन बाजू वाले को डबल दूंगा, मतलब ये एक घर इसको मिलेगा तो बाजू वाले को दो घर मिलने वाले. पहले ही वो इतना ईर्ष्या से जो है वो जल रहा है. अभी भगवान तो सामने आया है तो उससे तो फायदा लेना है. अब देखो ये क्या इच्छा करता है, ये इच्छा करता है, ये भगवान को कहता है भगवान मेरी ना एक आंख निकाल दे. ठीक है तो भगवान कहता है देखो मैंने कहा था मैं आपको कुछ दूंगा, कुछ लूंगा करके नहीं कहा ना, निकाल ले मतलब आप ले लो. तो तुमने जो है वो ठीक ठीक तरह से अपनी इच्छा भी बताई नहीं, इसीलिए जो है मैं वो अपना जो था वो कैंसिल कर लेता हूं, कैंसिल करता हूं. लेकिन तुमने मुझे बुलाया, मैं भगवान बुलाया, तो अब इसलिए जो आपने कहा कि आंख निकाल दे तो वो तो मैं तेरी पूरी करूंगा. ये है आज की हालत है ना? जीते खुद के लिए है या औरों के लिए है समझ में नहीं आता है. मन अपना बट ऑक्यूपाइड बाई अदर्स. अरे जो ऑक्यूपाई कर रहा है आपके मन को वो रेंट भी नहीं देता है. रेंट देता है क्या? वो भी नहीं देता है और पूरा टाइम आपके मन में बैठा रहता है. ये काहे की जिंदगी है भाई. तो स्पिरिचुअली एम्पावरिंग मीन्स पहले तो अपने को पहचानो. हमारी दादी जानकी जो हेड थे ब्रह्मा कुमारी के, तीन शब्द कहती हूं मैं, ये तीन शब्द के ऊपर क्या करना है, चिंतन. ओके, एंड मेडिटेशन इज स्पिरिचुअल थॉट्स, नॉट सिंपली अदर थॉट्स ना. आपको देह की दुनिया, ये संसार से हट करके विचार करना सीखना और विचार का चिंतन करना, दिस इज स्पिरिचुअलिटी. आध्यात्म कह रहे हैं ना. तो दादी जानकी के तीन प्रश्न लिख लीजिए. दिस विल एम्पावर यू लाइक एनीथिंग. इतने पावरफुल फील करोगे आप, यू आर एबल टू स्टैंड ऑन यूर सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. पहला प्रश्न, मैं कौन हूं, हु एम आई. फिर दूसरा प्रश्न, मैं किसका हूं, हुम डू आई बिलोंग टू. और तीसरा प्रश्न, अब मुझे क्या करना है. अब को भी अंडरलाइन कर दो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एम आई टू डू. ये तीन इतने सुंदर प्रश्न हैं, इतने सुंदर प्रश्न हैं जो आपके बहुत सारे प्रश्नों को समाप्त कर देंगे ना. जैसे हम कंपेयर करते हैं, अरे पैसे वाला है या ये है, मेरे पास तो कम पैसा है. अरे कौन सा पैसा रहने वाला है, जाते समय तो वो भी नहीं ले जाएगा, आप भी नहीं ले जाओगे. क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा, पैसा जाएगा, क्या जाएगा, फिर किया हुआ पाप और पुण्य जाएगा, है ना. देखो स्पिरिचुअली हाउ टू एम्पावर योर सेल्फ. खट्टे अंगूर की बात नहीं कह रही हूं, बट इट इज द ट्रूथ. आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ पाप आपके साथ जाएगा. दूसरा, अब दूसरी बात, हम कहते हैं ना लोगों को कि जो है ना, आप आइए सेंटर पर, मेडिटेशन कीजिए, रोज मुरली होती है उसका अभ्यास कीजिए. ऐसे हम कहते हैं ना, कहते हैं बहुत बिजी है. एंड मोस्टली हर कोई किस में बिजी है, कमाने में बिजी है, कमाने में बिजी है. बहुत है दीदी आजकल तो, मालूम है ना, रेट्स इतने ज्यादा है, बहुत टेंशन है. अच्छा बहुत अच्छा, बहुत. बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है. अच्छा बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है. यदि बच्चे का भाग्य उसके कर्म के कारण ठीक नहीं है, हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा आई है ना आपके घर में. अब वो जो आत्मा आपके घर में आपके बच्चे के रूप में आई है, अब उसके कर्म कैसे हैं वो हमको नहीं पता. और आप लगे जी 10 करोड़ कमाया, किसके लिए, बच्चे के लिए. हम तो चल दिए, उसको मिल गई सारी प्रॉपर्टी, और उसके अपने संस्कार के अनुसार, बुरे संस्कार वाला है तो 10 करोड़ कितने दिन में खत्म कर देगा, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. और आप इतने बिजी 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 होकर उसके लिए कमाया, और उसने तो क्या कर दिया, पूरा खाक में मिला दिया. अच्छा दूसरा है बच्चा, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सके, बस इवन मकान भी आपका जो है रेंट का ही था, लेकिन बच्चा होवनहार. और सपोज आप कोई भी चल बसता है, लेकिन उसके अपने अच्छे संस्कार के कारण वो क्या कर देगा, मिट्टी को भी सोना कर देगा, करेगा नहीं करेगा ना. तो एज पेरेंट्स हमारा रोल क्या है, व्हाट आर वी टू डू. वो तो भाग्य अपने साथ लाया हुआ है अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, तो हमको उसको अच्छे संस्कार देने का जो है ना मेहनत करनी है, ना कि पैसा देने की मेहनत करनी है. अच्छे संस्कार से वो ऑटोमेटिकली अच्छा जो है वह करेगा ही, करेगा नहीं करेगा, बताइए आप. तो हमको बिजी किसमें होना चाहिए? बच्चे को अच्छे संस्कार देने में. अब उसको अच्छे संस्कार देने हैं और हम जो है हमारा उठना सोना कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने का नियम नहीं, कुछ भी खाओ कैसा भी रहो, तो वो क्या संस्कार सीखेगा? क्या संस्कार सीखेगा? कभी कभी पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चा नहीं सुनता. मैं कहती हूं आप पहले हस्बैंड वाइफ एक दोनों आपस में कितना एक दूसरे की सुनते हो बताओ, फिर हम बच्चे की बात करेंगे. बच्चा दिन भर दृश्य क्या देख रहा है घर में? क्या दृश्य देख रहा है? वैल्यूज आर कॉट, वैल्यूज कैनॉट बी टॉट. हमारे कर्मों के द्वारा हम किसी को सिखा सकते हैं, ना कि कहकर के. कहकर किसको सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे? इसलिए अच्छे संस्कार देना यह मेरा कर्तव्य है. एज टीचर्स, टीचर्स ये हमको एक बड़ा भाग्य मिला हुआ है कि हम बच्चों के साथ हैं. एंड हम सुंदर यू नो बहुत एकदम हीरे तो हर कोई नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़े भी अच्छे निकल जाए ना तो संसार को आगे संभाल लेंगे. इसलिए मुझे क्या करना है, देखा देखी में नहीं. वो गटर में जा रहा है, मैं भी उसके पीछे पीछे गटर में जा रहा हूं. कुत्ता इंसान को काटता है तो क्या इंसान वापस कुत्ते को काटता है? क्या काटता है? क्या इंसान है ना, भगवान के बच्चे है ना. तो ये तीन प्रश्न ना आप हर बार अपने आप को पूछिए. ये प्रश्नों का समाधान आपको रोज की जो मुरली चलती है ना आश्रम पर, उसमें आपको रोज मिलेंगे. वैरायटी वैरायटी. और देखना अंदर से आप कितने सशक्त होंगे, पावरफुल फ्रॉम विद इन. एंड दिस पावर इज नॉट वायलेंट पावर, दिस इज अ वेरी लविंग पावर, दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं उसको, मर्सीफुल पावर. ऐसी यह पावर, वेरी साइलेंट पावर, जिसके आधार पर आप भी सशक्त होकर रह सकते हो और दूसरों को भी सशक्त कर सकते हो. ठीक है, तो इस प्रकार से स्पिरिचुअली अपने आप को एम्पावर करना है, अंदर अंदर ही अंदर अभ्यास करना है. और देखिए हम कितने कितने स्वयं में एक अच्छा एक गुड फीलिंग आपको एक्सपीरियंस होती रहेगी. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं. ओम शिव.
ओके, बहुत ही अच्छे रीति से हमको आंतरिक साधना क्या होती है, हम जिसको स्पिरिचुअल वेलबींग कहते हैं, अध्यात्म का कल्याण जो है, अध्यात्म से जो कल्याण होता है, बहुत अच्छी रीति से बताया. हम इस सेशंस के अंदर हमने सीखा कि नथिंग इज परमानेंट. जो बॉडी से जितने भी अटैच जितनी भी चीजें हैं वो परमानेंट नहीं है. तो परमानेंट क्या है? सोल है. और सोल के जो सेवन वैल्यूज है जो हम आने वाले सेशंस के इसके बाद हम सीखेंगे, जो ज्ञान शक्ति पवित्रता, जो सेवन वैल्यूज है वो हमारे परमानेंट है. आप को अभी हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल है. ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब हम उनसे मिले थे तो हमने उनको सवाल पूछा था कि सर आप ये दोनों आंखों के बीच ये चंदन का टीका हमेशा लगाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा आशीर्वाद के ब्लेसिंग का एक स्वरूप है या आशीर्वाद के रूप. फिर हमने जब उन्होंने सुबह के क्लासेस सुने उसके बाद उन्होंने महसूस किया अरे ये तो मेरे आत्मा का प्रतीक है. तो कितनी अच्छी चीज उन्होंने बताया. तो इनके भावार्थ से हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं, इनका मैं परिचय करना चाहता हूं. डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन, जिनका एजुकेशन हुआ है एमए एमफिल पीएचडी एंड बीपेड में. एजुकेशन के क्षेत्र में 27 इयर्स से लातूर के दयानंद कला महाविद्यालय में हिंदी विषय अध्यापक तथा 4 वर्ष प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है. 2019 से 2023 तक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के समकुलपति के रूप में अपना दायित्व संभाला है। अभी एज वर्तमान में हम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है नासिक में उनके समकुलपति के रूप में वो कार्यरत है। उनको बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है, मतलब राष्ट्रपति जी ने, महोदय ने, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के रूप में, एंड देन राज्यपाल महोदय ने भी उन्हें मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी थी। तो इतना अच्छा एजुकेशन का बैकग्राउंड है सर का, तो हम आगे का सेशन उनको हैंड ओवर करेंगे, आपसे विचार हम सुनेंगे। ओम शांति। आप यहाँ कंफर्टेबल हैं? यहाँ आके
ओम शांति। मंच पर आसीन अंजलि बेन को मैं नमन करता हूं। विकास भाई, जिनकी सूचना के माध्यम से आज मैं इस सत्र में उपस्थित हूं, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मैं पहले तो विकास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि आप सभी बड़े भाग्यवान हैं मेरे साथ कि एक अच्छा अवसर हमको ये प्राप्त हुआ सत्संग सभी का। ये केवल मंच पर से कहने की बात नहीं है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इससे पूर्व विकास जी ने मेरे परिचय में कहा कि मैं 4 वर्ष दयानंद कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य रहा, तो लातूर में एक रेड्डी परिवार है और वह भी इस संस्थान से जुड़ा है, और जब मैं प्रधानाचार्य था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक सेशन के लिए, एजुकेशन का जो सेशन है उसके लिए माउंट आबू चलेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है चलेंगे, तय हुआ। लेकिन आयन वक्त परिस्थितियां इस प्रकार की निर्माण हुई कि मैं उनके साथ में नहीं आ पाया, ये पहली बात। दूसरी बात के लिए साक्षी स्वयं विकास भाई भी जी है और पंकज जी भी यहां पर है। पिछले वर्ष हवाई जहाज का टिकट बनवाया और निकलने से 2 दिन पहले राजभवन से समाचार आया कि सूचना आ गई कि आपको राज्यपाल महोदय ने आमंत्रित किया है और आपको वहां पर आना है। मुझे मेरे दोनों टिकट छोड़ देने पड़े, रिफंड भी कुछ नहीं मिला। विकास भाई ने तीसरी बार फिर पूछा कि कैसे बिजनेस सर आपका कैसे रहेगा, तो मैंने कहा कि आना तो है और कृपा हुई सभी की, तो मैं सभी को इसीलिए मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हम सभी शिक्षा से जुड़े हैं और यह हमारे लिए बड़ा भाग्य का विषय है कि एक अच्छा अवसर परमात्मा ने हमें सौंपा है, कुछ निर्माण करने का दायित्व हम पर सौंपा है। अंजलि बेन जी ने कहा कि हम अलग अलग प्रकार के विकास के निर्मिति की प्रक्रिया में हैं, होड़ में हैं, तो बात तो बिल्कुल सही है कि हम बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भवनों के निर्माण से भवन में जो घर परिवार की जो भूमिका होनी चाहिए वो लुप्त होती चली जा रही है। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है लेकिन मंदिरों में जो पवित्रता चाहिए उसका अभाव मैं महसूस कर रहा हूं। दुनिया में आबादी बढ़ रही है लेकिन मनुष्यता नष्ट हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में यदि हम कुछ निर्माण की अपेक्षा रखते हैं, शांति चाहते हैं, बेन अंजलि बेन जी ने कहा कि मोबाइल आ गया, लेकिन मोबाइल आया उसके साथ बहुत कुछ आया लेकिन उसके साथ एक बड़ी चीज चली गई। मैं सोच रहा था शायद आप जवाब देंगे, तो आपने तो नहीं दिया, लेकिन मैंने लिख लिया मेरे पास में, मैंने क्या खोया, तो मैं मानता हूं कि मैंने मेरी शांति खो दी, मेरा चैन खो दिया। तो ये विकास के सारे साधन जो है उपकरण है ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ भी सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है कि अंतिम जीवन का सत्य क्या है उसकी खोज हमको करना है। जो हमारा सत्र है आज का कि अपने भीतर के संसार की खोज करना, और वहां से एक कल्याण की आध्यात्मिकता के लिए जो चीजें उपलब्ध है उसको खोजना, उसको ढूंढना। और एक अध्यापक के रूप में हमको ये केवल अपने लिए नहीं खोजना है, तो ये हमने अपने लिए खोजना, और साथ साथ में हमको उस प्रकार का संस्कार हमारे छात्रों पर भी करना है। क्योंकि केवल शिक्षा का मतलब ज्ञान देना, जो किताब में लिखा है वो छात्रों तक पहुंचाना, ये मात्र दायित्व नहीं है, ये शिक्षा का मेरी दृष्टि से बहुत छोटा पहलू है। शिक्षा के माध्यम से चरित्रता का निर्माण करना है, मनुष्यता का निर्माण करना है, मानवता का निर्माण करना है, मूल्यों का संस्कारित करना है, ये शिक्षक का दायित्व है। तो हमको अपने भीतर की खोज उसके लिए करनी होगी। तो क्या करें, बहुत विस्तार से बहन अंजलि बहन ने बताया, इसलिए मैं उस विषय में, वैसे अधिकारी पुरुष नहीं भी हूं मैं उस विषय का, उस क्षेत्र का, वो अधिकार तो उनका है, लेकिन पांच बिंदु जरूर स्मरण रखेंगे जिसका जिक्र भी बहन ने किया। एक चिंतन, दूसरा ध्यान, तीसरा आत्मनिरीक्षण, अपने आप को समझना, चार मैं कौन हूं, और इसके साथ में अंतिम एक चार जोड़ता हूं मैं कड़ी उसमें, अपने भीतर के शांति की खोज। क्योंकि हर मनुष्य किस लिए काम कर रहा है, तो उसे शांति के लिए काम कर रहा है, और वो शांति उसके लिए चाहिए। जो बात बहन ने यहां पर कही उसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं कि हम अपने साथ में क्या ले जाएंगे। तो एक साहूकार थे, बहुत अमीर थे, तो किसी ने कहा उनको कि इतना सब पैसा कमा रहे हो तो कंजूस बड़े, कहीं कुछ खर्च भी नहीं करते, कुछ काम भी नहीं करते अच्छा समाज का, तो ये सारा यहीं तो पड़ा रहेगा, धरा तो यहीं रहेगा, अपने साथ थोड़े ले जाओगे। तो साहूकार सोचने लगा कि अरे बात तो सही है, लेकिन फिर भी कैसे ले जाऊं। तो उन्होंने ऐलान कर दिया अपने सारे राज में कि जो ये सारी संपत्ति मेरी ऊपर ले जाने का मार्ग मुझे दिखाएगा उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। 8 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर उसने कहा कि शायद राशि कुछ कम हो गई। उसने फिर दूसरा ऐलान कर दिया कि मैं 10,00,000 रुपये दूंगा। लोगों ने सोचा ये साहूकार पगला गया है, इन्हें 10,00,000 नहीं 10 करोड़ भी देगा तो इसको मार्ग कौन बताएगा। तो एक बड़ा होशियार था जवान, वो आ गया और उसने कहा साहूकार थे कि साहूकार मैं आपको मार्ग दिखाता हूं, आपकी सारी पूंजी ऊपर ले जाने का मार्ग दिखाता हूं। साहूकार खुश हो गया कि चलो कोई ना कोई तो है। तो उसने कहा लेकिन पहले 10,00,000 तो देने की व्यवस्था की। हाँ 10,00,000 तो तैयार है, तो लाकर सामने रख दिया, बताओ मार्ग क्या है। तो मार्ग उसने कहा कि मार्ग तो बहुत आसान है। तो बोले क्या मार्ग है। तो साहूकार से कहा उसने कि आप अमरीका जाना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ पैसा ले जाएंगे, तो अमेरिका में रुपया तो नहीं चलेगा। तो कह नहीं चलेगा, तो फिर क्या करोगे। तो मैं डॉलर ले जाऊंगा, रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर दूंगा, करेंसी कन्वर्ट कर दूंगा। दुबई जाना है तो दिनार बना लूंगा। तो फिर उसने कहा एक काम कीजिए ना, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की करेंसी ले जाइए। तो उसने कहा कि स्वर्ग की करेंसी क्या है। तो जवाब उसने दिया कि स्वर्ग की करेंसी है आप यहां जो कर्म करोगे यही तुम्हारी स्वर्ग की करेंसी है, वही आपके साथ में ऊपर आपके साथ ही राशि को ले जाएगी। तो हम इस मार्ग पर चलते समय अपने भीतर की खोज रखें और उस सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। कई बार होता यह है कि हम कहते तो है कि हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कई बार सत्य सत्य नहीं होता, वह अर्ध सत्य होता है। एक सुरेश और रमेश नाम के दो मित्र थे, उनके गुरुजी बड़े सज्जन थे, विकास भाई ने बड़ा संस्कार किया, ऐसे गुरुजी थे वो भी। तो सुरेश और रमेश को विकास भाई ने पढ़ाया और कहा कि भाई बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बात करनी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य बोलेंगे। जब उनकी पढ़ाई समाप्त हुई तो विकास जी ने कहा कि नहीं, आज आपको ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, कसम खानी है कि मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने इस कसम भी खाई। एक दिन ये रमेश और सुरेश ये दोनों यात्रा चले गए, मेले में गए। मेले में घूमते 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 थोड़ी सी भूख लग गई तो सामने एक मिठाई की दुकान थी, तो दिल ने चाहा कि चलो मिठाई खानी चाहिए, लेकिन अब पैसे तो जेब में नहीं है, क्या करें। तो मिठाई वाले के दुकान पर पहुंचे, देखा तो सामने एक प्लेट में 5 लड्डू रखे हुए थे, बहुत बढ़िया लड्डू थे, देसी घी के बने थे। तो कहा कि अब क्या करें, तो उसमें से सुरेश ने 2 लड्डू उठा लिए, 5 लड्डू थे प्लेट में, सुरेश ने 2 लड्डू उठाए और रमेश के हाथ में दे दिए। दुकानदार ने देखा कि 2 बच्चे खड़े थे यहां पर और प्लेट में अभी तक लड्डू 5 थे, अब 3 ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुरेश से पूछा कि अरे तुमने लड्डू चुराए? तो सुरेश ने तो कसम खाई है ना सच बोलने की, सुरेश और रमेश ने दोनों ने भी। तो सुरेश ने कहा नहीं, मेरे पास लड्डू नहीं है। तो सुरेश की बात तो सही है क्योंकि उसने 2 लड्डू उठाए और रमेश के हाथ में दे दिए। जब दुकानदार ने पूछा कि लड्डू आपने चुराए, तो सुरेश ने कहा मेरे पास लड्डू नहीं है, देखिए तलाशी लीजिए मेरी, मेरे पास लड्डू नहीं है। तो दुकानदार ने रमेश की ओर देखा और रमेश से पूछा कि आपने लड्डू चुराए? तो रमेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, मैंने लड्डू नहीं चुराए, मैं चुराए रमेश, सुरेश ने दिए रमेश को। दोनों भी सत्य बोल रहे हैं क्या? दोनों भी सत्य बोल रहे हैं। तो ये सत्य सत्य नहीं है। हम जीवन में कई बार सत्य बोलने का अभिनय करते हैं, हम इससे बचने का प्रयास करें। ये सारे अध्यात्म की बात कहीं हमको बाहर से मिलने वाली नहीं है। हमारी अवस्था कस्तूरी मृग के समान बनी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, वो कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उसको ढूंढते हुए सारे जंगल में घूमता है। तो इसको ढूंढना कहां है, तो अपने आप में खोजना है। और ये अवसर है कि हमसे यहां पर आए हैं, तो इस बहाने अपने आप को, स्वयं को खोजने का एक अवसर यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। पुनश्च एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, अपने आप को खोजो। मैंने सुबह भी कहा था जो महाराष्ट्र से आए हैं उनसे कि बाकी कुछ करें या ना करें, कम से कम हम अपने में जो शिक्षक है उस शिक्षक की खोज करें। प्रणाम, नमस्कार।
बहुत ही सुंदर सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल देते हुए अपने को समझाया कि स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है। इसके लिए अंतरात्मा की खोज हमको जो एक्सप्लोर करना है वो किस आधार से करनी है, क्योंकि सत्य की पहचान जब होगी तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। आध्यात्मिक हम कैसे थे कल्याण, स्पिरिचुअल वेलबींग, तो ये वेलबींग शब्द है आने वाले इसमें बहुत फेमस होने जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसे कहता हूँ, जब हम सर आपको भी पता है, जब हम कोर्स का डिजाइन कर रहे थे जो हमने लॉन्च किया काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ का, तो जो हेल्थ शब्द जो है उसको सर ने कहा उसको निकाल के उसको वेलबींग कीजिए, वो बहुत पहले उन्होंने कहा था। और जब ये हमने उनको इन्विटेशन देने के लिए गए थे, ये कॉन्फोलिस्टिक वेलबींग देखकर भी उनको बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ यही उनका सक्सेस है। तो जिस प्रकार से हमने ये सेशन में सुना कि हमारा जो स्पिरिचुअल वेलबींग है उस स्टार्टिंग का 5 चीजें हमको सिखाता है कि हम परमात्मा से कैसे जुड़े, परमात्मा कौन है, उसकी स्वरूप क्या है। देन सेकंड हमको इस सेशन में हमको मिला कि हमारा जीवन का उद्देश्य और उसका अर्थ हमको क्या समझाता है। जब आप डीप साइलेंस में जाएंगे तो आपको ये 100% महसूसता होगी। देन थर्ड हमने सर से सुना कि आंतरिक शक्ति और जिस प्रकार से हमारी इनेट वैल्यूज हैं वो क्या है, उसको महसूस करना, ये अंदर ही अंदर स्वयं को खोजना है, मैं कौन, मेरा कौन। जिस प्रकार से हमारे दादी जानकी के जो वर्ड्स थे, हमेशा वो कहते थे कि मैं कौन और मेरा कौन। चौथी चीज है जीवन के लिए, प्रकृति के लिए कृतज्ञता, प्रशंसा और भावना विकसित करना। जिस प्रकार से हमने एनवायरमेंटल वेलबींग का सुना सेशन, तो हमने प्रकृति के लिए हमसे वो ड्रिल कराई कि प्रकृति को भी हमको कैसे सकाश देनी है। और पांचवा जो है, जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हम किसी को क्षमा करें। कोई भी कितना भी कुछ करता है तो उसको हम ब्लेसिंग दे, क्षमा करें, वो अपना अपना पार्ट बजा रहा है ड्रामा के अनुसार। और उसको छोड़ना है, लेट गो करना है, जो हमेशा सिस्टर शिवानी भी कहते हैं कि लेट गो, लीव इट, लीव इट। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये मैं क्यों आपको कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला जो सेशन है ना, वो आपको अनुभूतिपूर्ण सेशन है। इसके लिए आपको हम कहना चाहते हैं कि आप जहां पे भी, मतलब आप यहां से जब आप प्रोसीड करोगे, तो हमको एक प्रॉमिस करना है आप, कोई भी किसी ने भी बात नहीं करनी है, किसी ने भी बात नहीं करनी है। बहुत साइलेंसली दो के रो में जा सकते हैं, और बहुत अच्छे से यहां से प्रोसीड होकर के, जैसे फरिश्ता चलते, आपने सभी ने आज सुबह भी चले थे, जब ऋतु बहन ने बहुत अच्छे तरीके से फ्लूएट बजाई थी, तो उसी आधार से, क्योंकि बाहर वाले लोग भी बहुत सारे हैं, आपको देखेंगे तो ऐसे आप फरिश्ता चल रहे, तो आप धीरे धीरे चल करके जानकी दादी पार्क जो है, इतना वंडरफुल पार्क है, इतना अच्छा एनवायरमेंट है वहां पे, तो वहां पे हम मेडिटेशन करेंगे। तो उसके पहले हम हमारे जो अतिथिगण है उसका, उनका हम सम्मान करेंगे। तो हमारी टीचर बहनें हैं, उनको मैं बोलता हूँ।